नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं, महाशक्ति की लोक यात्रा।
जी, ये डॉक्टर प्रणव पांड्या जी द्वारा लिखी गई है और गायत्री परिवार की संस्थापिका वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के जीवन पर आधारित है।
हाँ, और हम इसके एक खास अध्याय अपनी संतानों को माँ का आश्वासन पर गहराई से बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि वंदनीय माता जी ने अपने अनुयायियों को क्या आश्वासन दिए थे।
जी, ये अध्याय अपने आप में बहुत गहरा है।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे बहुत प्रभावित करती है वो है वंदनीय माता जी का ये वचन कि स्थूल शरीर न रहने पर भी वे हमेशा सुलभ रहेंगी। ये कोई साधारण बात नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक दिलासा नहीं था। उन्होंने साफ कहा, देह सबकी छूटती है पर इससे क्या, मैं तो जैसी की तैसी बनी रहूंगी। तुम में से जब कभी कोई माँ माँ कहकर बुलाएगा तो मैं दौड़ी भागी चली आऊंगी। ये एक तरह से भौतिक उपस्थिति से परे एक शाश्वत आध्यात्मिक बंधन का वादा है।
मतलब ये एक गहरा कनेक्शन है।
जी, इसे भावमयी जगदम्बा की पराचेतना से जुड़ाव कहा गया है और उन्होंने माँ शब्द को ही आप देखिए सबके लिए एक जागृत और चैतन्य महामंत्र बना दिया।
अच्छा,
और फिर एक भक्त ने उनसे पूछा भी था कि ये बुलाना कैसा होता है, मतलब कैसे पुकारें। ये बात बहुत दिलचस्प है।
हाँ, उनका जवाब देखिए कितना सहज था। उन्होंने एक छोटे बच्चे का उदाहरण दिया।
जी,
जो बोलना भी नहीं जानता।
जी, कि वो बस रोता है माँ को याद करके और माँ सब काम छोड़ के दौड़ी आती है। उन्होंने कहा, माँ को बुलाने के लिए कोई विधि विधान भी होता है क्या?
सही बात है।
बस दिल की तड़प चाहिए, भाव विहवलता चाहिए। तो यहाँ विधि विधान से ज्यादा महत्व भाव का है, उस अंदरूनी तड़प का है।
तो मतलब ये हुआ कि किसी तय तरीके से ज्यादा जरूरी है वो दिल का कनेक्शन, वो अंदर की पुकार।
बिल्कुल, इससे ये आध्यात्मिक संबंध बहुत व्यक्तिगत हो जाता है, किसी कर्मकांड या तरीके पे निर्भर नहीं। बस माँ और बच्चे का जैसा रिश्ता होता है ना, वही बात उन्होंने कही, माँ और बच्चों का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है बेटा, ये एकदम नैसर्गिक है, सार्वभौमिक है।
और ये जुड़ाव सिर्फ भावनात्मक स्तर पे ही नहीं था, साधना से भी जुड़ा था। जैसे 1992 की एक घटना का जिक्र आता है।
जी हाँ, वो घटना जब एक कार्यकर्ता ने पूछा था कि क्या वो पूजा में वंदनीय माता जी और गुरु जी के चित्रों में सूर्य और गायत्री या महाकाल और महाकाली की कल्पना कर सकते हैं।
हाँ, तो उनका जवाब क्या था?
उनका जवाब था कि ये व्यक्ति की अपनी श्रद्धा और भाव संवेदना पर निर्भर करता है। और उन्होंने ये भी साफ किया, जो गुरु जी है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही गुरु जी है।
ये एकात्मता, इसका क्या महत्व है?
देखिए, ये गुरु सत्ता की जो अवधारणा है उसकी अविभाज्यता को दिखाता है। मतलब गुरु और माँ वो एक ही शक्ति के दो रूप हैं, और श्रद्धा भाव और साधना कैसे जुड़े हैं ये भी पता चलता है।
और उन्होंने ये भी कहा कि उनका ध्यान साधक को गुरुजी और गायत्री माता तक जल्दी पहुंचा सकता है।
जी, एक तरह से उन्होंने अपने स्वरूप को एक सेतु, एक पुल की तरह बताया। और देखिए, उनकी कृपा सिर्फ मोक्ष या आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही नहीं,
अच्छा,
बल्कि जो लौकिक कष्ट हैं, रोजमर्रा की परेशानियां, उनके निवारण में भी सहायक मानी गई। हालांकि वो खुद को हमेशा विनम्रता से निमित्त मात्र ही कहती थीं।
निमित्त मात्र मतलब एक जरिया।
हाँ,
कि करने वाली तो वो परम शक्ति ही है।
जी,
वो तो बस माध्यम है।
जी,
ये उनकी विनम्रता थी।
इसी से जुड़ा एक और गहरा सवाल मन में आता है जो अक्सर पूछा जाता है कि मोक्ष ज्ञान से मिलता है या कृपा से। इस पर वंदनीय माता जी ने क्या कहा?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने देवी सप्तसती का संदर्भ दिया।
एक श्लोक है, सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवती मुक्तेय।
इसका अर्थ क्या हुआ?
इसका अर्थ है कि वे यानी आदिशक्ति माँ ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। तो इससे उन्होंने ये स्थापित किया कि ज्ञान भी असल में माँ की कृपा के बिना नहीं मिलता।
अच्छा, तो मतलब कृपा पहले है।
जी, कह सकते हैं कि कृपा ही वो दरवाजा खोलती है जिससे ज्ञान मिलता है और फिर मुक्ति संभव होती है। और इस नजरिए से देखें तो मातृशक्ति यानी माँ का रूप गुरु सत्ता का वो सबसे सुलभ, सबसे सक्षम रूप है जो साधक को कृपा तक पहुँचा सकता है।
ये तो बहुत गहरी बात है। और अंत में जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी जीवन कथा का पाठ भी एक साधना हो सकता है,
हाँ, तो उन्होंने कहा कि समय आने पर उनकी और गुरुजी की जीवन गाथा, उनके लीला प्रसंग वो सामने आएंगे और उन्हें पढ़ना, उन पर मनन करना, ये गुरु सत्ता से साक्षात्कार जैसा ही होगा।
और फिर उन्होंने अपना वो मूल आश्वासन दोहराया।
जी बिल्कुल, मैं माँ हूँ, मुझे तो कोई कभी भी याद करेगा तो उसके समीप रहूंगी। ये बहुत बड़ा आश्वासन है।
हाँ, और उन्होंने उन लोगों को भी आश्वासन दिया जो उनसे कभी मिले नहीं थे।
हाँ, कहा कि उनका प्यार उन पर और भी अधिक होगा। ये दिखाता है कि उनका प्रेम और कृपा समय और स्थान की सीमाओं से परे है।
तो कुल मिलाकर इस अध्याय का सार क्या निकलता है?
तो सार यही है, देखिए, कि ये एक बहुत ही व्यक्तिगत कृपा पर आधारित मार्ग है। इसकी कुंजी कोई जटिल पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सरल दिल से निकली पुकार है, माँ।
और ये आश्वासन हमेशा के लिए है?
हमेशा के लिए, समय और भौतिक उपस्थिति से परे, और निरंतर समर्थन का वादा है। उन्होंने कहा ना, योग क्षेम का वहन करूंगी, मतलब अनुयायियों के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह के कल्याण का ध्यान रखने का वचन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संबल है।
तो संक्षेप में कहें तो इस अध्याय का केंद्रीय भाव है वंदनीय माताजी का अपनी शाश्वत उपस्थिति और अटूट समर्थन का आश्वासन, जो बस हृदय से माँ पुकारने पर सुलभ हो जाता है।
जी हाँ, और ये स्रोत हमें एक तरह से सोचने पर मजबूर करता है कि जो स्थापित तरीके हैं, जो कर्म कांड है, उनसे परे जाकर सिर्फ सरल सच्ची भावना की शक्ति से उस परम सत्ता से जुड़ने की क्या संभावनाएं हैं। ये विचार करने योग्य बात है कि हमारे अपने जीवन में, चाहे वो आध्यात्मिक यात्रा हो या व्यक्तिगत जीवन, इस तरह का सीधा भावना प्रधान संबंध बनाने की कोशिश करना या उसे खोजना, वो क्या कुछ नया सामने ला सकता है? ये एक गहरा प्रश्न है जिस पर श्रोता विचार कर सकते हैं।